أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفقه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم. تمام نبیوں کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں سلام علیکم طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر، صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور دنیا کے عظیم ماں باپ حضور کے ماں باپ پر. آج کی گفتگو جو ہے وہ 45 مرحلے میں داخل ہو گئی، اور سارنامہ کلام کے اندر میں نے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم خواجہ سید قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی اوشی چشتی ثم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا ہے سرنامہ کلام. تاریخ پیدائش جو ہے وہ آپ کی 1173 عیسوی ہے، 1173، اور آپ کی تاریخ وصال جو ہے وہ 1235 ہے، 1235 ہے. تو اس حساب سے آپ کی عمر جو ہے وہ ٹوٹل آپ کی عمر مبارک وہ 62 سال ہوئی. تو میں بہت کوشش کرتا اولیاء کرام کے قصص کو پڑھتے ہوئے کہ یہ جو سن ہے یہ سن جو ہے یہ میچ کر جائے، لیکن ہوتا کیا ہے، اگر میں تاریخ لکھتا ہوں تو وہ آگے کا واقعہ جو ہے نا وہ اس کو جھٹلا دیتا ہے، اور اگر اسے صحیح کرتا ہوں تو وہ جو مورخ واقعہ لکھتا ہے وہ اس تاریخ کا نہیں ہوتا، اور پھر اگر یہ تاریخ صحیح کرتا ہوں تو ان کی ملاقات جو دوسروں سے ہوتی ہے وہاں جا کے تاریخ خراب ہو جاتی، تو وہ ایکوریٹ اور ایگزیکٹ جو ہے وہ نہیں بنتی. تو میں نے اب میں ذرا اوائڈ کرنے لگ گیا ہوں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ 5-6 کتابوں نے ایک ہی لکھا ہے تو میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش اکثر کتابوں میں نے 1173 ہی دیکھی ہے، اور اکثر کتابوں کے اندر 1235 آپ کی تاریخ وصال ہے، اس لیے میں نے اس کو بیان کر دیا ہے. جائے پیدائش جو ہے، آپ کہاں پیدا ہوئے، اوش کے اندر. اس کو انگلش میں ابھی او ایس ایچ اوش، یہ اوش کہاں ہے؟ موجودہ دور کے اندر اوش جو ہے یہ جمہوریہ کرگستان کے اندر ہے. یہ اوش جو ہے آج کے دور میں بھی جمہوریہ کرگستان کا دوسرا بڑا شہر ہے آج بھی. تو اس شہر کو ان شہروں کے ساتھ ملایا جاتا ہے جو بڑے قدیم ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ اوش جو شہر ہے جہاں پیدا ہوئے تھے، یہ 3000 سال پرانا شہر، تو بہت قدیم شہر. تو جب بہت قدیم ہے تو یہ مرکز ہوا کرتا تھا، تب بھی اب بھی مرکز ہے. اس شہر میں پیدا ہونے کی نسبت سے آپ کو اوشی کہا گیا. تو اب آپ سمجھ گئے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی، یہ اوش شہر کی وجہ سے آپ کو اوشی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اصل نام آپ کا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بختیار آپ کا نام ہے، قطب الدین جو ہے وہ آپ کا لقب ہے. بعض جگہ میں پڑھتا ہوں کہ بختیار آپ کو آپ کے پہلے استاد جو محلے کے استاد تھے شیخ عصر ابا حفص جو ہیں، انہوں نے آپ کو بختیار کہا تھا. نام آپ کا جو ہے وہ محمد ہے. تو بعض جگہ میں پڑھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بختیار جو ہے یہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ آپ کو بختیار کہہ کر پکارا کرتے تھے. یہ اس کو بختیار نہیں پڑھیں گے، بخت یار. سید ہیں، خاندانی بیک گراؤنڈ جو ہے آپ سید ہیں، سید ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا اور مولا علی شیر خدا جو داماد آپ کے، ان کی اولاد میں سے، یعنی امام حسن سے. تو آپ کے والد گرامی جو ہیں ان کا نام سید کمال الدین بن سید موسیٰ، اور کچھ شجرے میں دیکھتا ہوں تو وہاں سید موسیٰ پہلے ہے اور کمال بعد میں ہے. فرہنگ آصفیہ کے اندر آپ کا نام جو ہے وہ قطب الدین بن خواجہ کمال الدین بن احمد موسیٰ لکھا ہوا ہے فرہنگ آصفیہ کے اندر. کافی ان کی ریسرچ ہے تو انہوں نے آپ کا نام جو ہے وہ یہ تحریر کیا. تو انہوں نے آپ کے والد گرامی کا نام خواجہ کمال الدین لکھا. یہ جو خواجہ کا لفظ زیادہ تر آپ سنیں گے تو جو چشتی سلسلے کے اولیاء کرام ہیں چشتیہ سلسلے کے، ان کے نام کے ساتھ خواجہ کا لفظ جو ہے وہ زیادہ آتا ہے. یا یہ خواجہ کیا ہے؟ اصل میں یہ لکھا جاتا ہے خے واو الف جیم، تو اگر اس کے اوپر اگر نالج نہ ہو تو اس کو خواجہ پڑھیں گے، لیکن یہ خواجہ پڑھا نہیں جاتا، واو جو ہے یہ پڑھی نہیں جاتی، لکھی جاتی ہے، پڑھا اس کو جاتا ہے خواجہ. تو خواجہ جو ہے یہ آقا کے لیے، سردار کے لیے، خداوند آقا اس معنی کے اندر یہ آتا تھا، لیکن بعد میں یہ خواجہ جو ہے یہ استعمال ہونے لگ گیا بزرگوں کے لیے. تو خواجہ سید قطب الاقطاب قطب الدین بختیار قاضی رحمۃ اللہ ہے، جو بھی ولی کامل ہے دنیا میں مشہور ہوا تو جاہل نہیں ہو سکتا مشہور. صاحب علم اللہ تعالیٰ عارف اسے بناتا ہے، ولی اسے بناتا ہے جو عالم ہوتا ہے، جاہل کو نہیں بناتا. اور اگر وہ جاہل ہو تو اپنے خاص علم لدنی اپنے پاس سے عطا فرما کے اس کو اپنا قرب عطا کرتا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی ثم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی کا انتقال جو ہے وہ بچپن میں 18 ماہ کہتے ہیں کہ 18 ماہ تقریباً عمر تھی آپ کی، 1 سال 18 ماہ، تو یعنی 6 ماہ گزرے ہوئے. 18 ماہ جو ہیں وہ آپ کی عمر ہے آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا. تو والدہ ماجدہ نے یہ بار اٹھایا، تو جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن ہوتی، کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہے، یعنی تقریباً 5 سال جب آپ کی عمر ہوتی ہے، تو والدہ ماجدہ کو فکر ہوئی کہ میرے بیٹے کی رسم بسم اللہ کی جائے. کیوں؟ مسلمانوں کے اندر یہ طریقہ ہے، بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو اس کو اللہ کا نام سکھایا جاتا ہے، اور جب پڑھنا شروع ہوتا ہے تو پہلے بسم اللہ پڑھایا جاتا ہے. یہ پرانے دور میں ہوتا تھا، آہستہ آہستہ پھر ختم ہونے لگ گیا، اب تو شروع میں انگلش پڑھائی جاتی. اللہ کا نام جس بچے کے بولنے کے ساتھ ہی شروع ہو جائے، برکت اور رحمت. اب آپ کو فکر دامن گیر ہوئی، بچے کی رسم بسم اللہ جو ہے یہ بسم اللہ کس سے پڑھوایا جائے؟ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہو آج کے دور میں، لیکن پرانے دور میں یہ کوشش ہوتی تھی کوئی بہت نیک آدمی ہو کہ جو بیٹے کو آغاز کروائے تو بیٹے میں برکتیں جمع ہو جائیں. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کا خاندان بہت بڑا خاندان تھا، اوش کیا تھا. آپ کو پتا سید کی تو ویسے بھی عزت ہوتی ہے، اور آپ کا خاندان تو بڑا پڑھا لکھا خاندان ہو، بڑا امیر، غریب مت سمجھیے گا. یا جتنے اولیاء کرام ہوئے ہیں تمام کے تمام خاندان میں اچھے، علم میں زبردست اور امیر. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اس دولت کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتے تھے. ہاں غریب کوئی بندہ نہیں چلا، اللہ تعالیٰ نے دولت کے ذریعے سے اس کی مدد کی ہے. اب وہ طریقہ جدا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ مرید امیر دے دیتا تھا یا وہ پیر خود بہت امیر بن جاتا تھا، لیکن وہ دولت ان کے دل کے اندر نہیں آتی تھی، دولت کو استعمال کرتے تھے جیسے کشتی کے لیے پانی کو استعمال کیا جاتا. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کا خاندان ٹھیک ٹھاک خاندان. ان دنوں اوش کے اندر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ تو شریف لائے ہوئے تھے، تو آپ کی والدہ ماجدہ کو بھنک پڑ گئی، پتا چلا کہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ تو شریف لائے ہوئے، تو آپ نے غنیمت سمجھا تو غلام اور کچھ رشتے دار ساتھ بھیجے بیٹے کو کہ ان سے کہیے کہ میرے بیٹے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دیں، یعنی شروع کروا دیں. محفل جاؤں گے، اب خود سوچئے کہ خواجہ معین الدین میری چشتی جہاں جلوہ فرما ہوں گے وہاں کتنے آدمی ہوں گے، تصوف کے لحاظ سے، روحانیت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، عمرا، گورنمنٹ کے لحاظ، سب لوگ جمع ہیں اور آپ بھی کوئی کم نہیں. جب ابھی خواجہ معین الدین میری چشتی رحمۃ اللہ تعالی بسم اللہ پڑھانے لگے تو رک گئے، ایک دم رک گئے. پوچھا حضور رکے کیوں ہیں؟ کہا مجھے آواز آئی ہے کہ تم رکو، حمید الدین آ کر پڑھائے گا اسے. اللہ اکبر جل شان، حمید الدین آ کر پڑھائے گا، تم رکو. تو آپ جو ہیں رک گئے. اب یہاں ذرا سن لیجئے، یہ بسم اللہ کا سلسلہ کیا ہوتا تھا، یہ آواز کیا آئی کہ آپ رکو، ان کی تختی آ کر حمید الدین لکھیں گے، قاضی حمید الدین لکھیں گے. وہ بغداد میں تھے. اب طریقہ یہ ہوتا تھا کہ رسم بسم اللہ اس دور میں کہتے کسے تھے، تختی جو ہے وہ لی جاتی تھی، جو بڑا آدمی بسم اللہ پڑھاتا تھا तो वो तख्ती लिखता था। वो तख्ती क्या होती थी? बच्चा सामने बैठा है, बच्चे को पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद कहा जाता था कि अब ये पढ़ो, तो मामूल के मुताबिक बच्चा जो है वो अलिफ बाता सा ही पढ़ेगा, या सरनल कुरान जो होता है तो बाता ही सा पढ़े। तो अब वो बच्चा पढ़ता था अलिफ बा ता, तो वो उस्ताद जो होते थे वो उसे तख्ती पे लिखते थे अलिफ बा। तो ये तख्ती जो थी ये बचपन से ही हमारे अंदर डाल दी जाती थी। क्यों? इसलिए कि उस बच्चे ने बड़े होकर आलिम बनना है। तो उस दौर में किताबें प्रिंटेड नहीं होती थी, वो आलिम दीन खुद अपने हाथ से लिखता भी था। तो बच्चे के लिए जरूरी होता था कि उसकी लिखाई भी अच्छी हो, अगर लिखाई अच्छी नहीं होगी तो लिखेगा कैसे? तो इसलिए तख्ती शुरू से शामिल कर दी जाती थी। और अब हमारे जो बच्चे हैं उनसे तख्ती छीनी गई। मैं था, मुझे याद है कि उस्ताद इब्राहिम साहब, मुझे नाम याद है, तो दूसरी जमात की बात कर रहा हूं, तख्ती एक दफा हमने जरूर लिखना होती थी और घर से भी लिखकर रखते थे, तो गोया कि कम अज कम दो दफा तख्ती होती थी और बाकी भी सारी चीजें हमारी जो है वो होल्डर के साथ और निब के साथ लिखी जाती थी। ये एक बहुत बड़ा सरमाया था और हमें फख्र था इसके ऊपर कि हमारे पास लिखने के डिजाइन हैं, हमारी लिखाई बड़ी खूबसूरत है। ये हमारा एक सरमाया था जो चलता आ रहा था। वो क्या किया कि साम्राज्य ताकतों ने मुसलमानों से ये चीज भी छीन ली। खत्ताती के अंदर मुसलमानों का जवाब है, अब ये कंप्यूटर दे दिया गया। तो अमेरिका के अंदर बच्चे जो है गंदी से गंदी लिखाई होती है, उनको ये कंप्यूटर पकड़ा दिया गया। अब जब उनको कहा जाता है कि अपना नाम लिखो तो इंतहाई गंदा नाम होता है। तो पुराने दौर के अंदर ये तख्ती शुरू से शामिल कर दी जाती थी। इसीलिए हमारे अब्बा की, नाना की, इनकी लिखाइयां बड़ी अच्छी होती थी, मीनवीस वो लिखते रहते थे। तो उस दौर में ये होता था कि वो बच्चे का सबक लिख दिया जाता। हमीदुद्दीन काजी हमीदुद्दीन तशरीफ ले आए, अल्लाह ताला ने ताकत दी और वो वहां महफिल में मौजूद। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह मौजूद। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई, पढ़ाने के बाद हमीदुद्दीन काजी हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह शहनशाह बुखारा, आपने तख्ती को पकड़ा, कहने लगे बेटे पढ़ो अलिफ। अब वो पढ़ते तो ये लिखते, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता था वही लफ्ज लिखा जाता था, पढ़िए अलिफ। आप चुप। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काजी रहमतुल्लाह चुप। उन्होंने कहा शायद सुना नहीं, कहा बेटी पढ़िए अलिफ बा। हमने कहा नहीं, यहां से नहीं पढ़ूंगा। तो कहां से पढ़ेंगे? तो कहा आप तख्ती पे लिखिए सुबहान, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता था वही तख्ती पे लिखा जाता था। कहा पढ़िए सुबहान, लिखिए सुबहान। तो कहा बेटे कायदा जो है वो तो अलिफ बात आसा से शुरू होता है। कहा अलिफ बात आसा नहीं पढ़ना मुझे, आप अलिफ बात आसा की बात कर रहे हैं, मुझे 14 के 14 पारे आते हैं, मुझे सुबहान अल्लाह जी से पढ़ना है। सब हैरान रह गए, सब हैरान रह गए कि सुबहान अल्लाह जी से क्यों पढ़ना है। तो आप फरमाने लगे कि जब से मैं पैदा हुआ हूं मेरी वालिदा माजदा को 14 पारे आते हैं, मेरी वालिदा माजदा मुझे गोदी में लेकर 4 साल और 4 महीने गुजर गए हैं, मेरी वालिदा जब सुबह उठती हैं मुझे अपनी गोदी में रखती हैं दूध पिलाते हुए, या मैं गोदी में लेटा होता हूं तो मेरी वालिदा रोजाना 14 पारों की तिलावत फरमाती हैं। अब आप खुद ही सोचो कि वो 14 पारे जो मैं 4 साल से सुन रहा हूं क्या मुझे याद नहीं होंगे? अब यहां जरा रुक जाइए, कुछ लोगों ने इस करामत को सुना तो मजाक उड़ाया, हाँ ये कैसे हो सकता है कि 14 पारे बच्चे को याद हो जाए। तो मैं उन लोगों से इतना पूछना चाहता हूं, सिर्फ एक सवाल, तेरा बच्चा जब 2 साल का होता है तो तेरी जुबान कैसे बोल रहा है? बस इतना जवाब दे दे। और 4 साल का बच्चा अमेरिका के अंदर फ्रीक्वेंटली इंग्लिश बोलता है, फ्रीक्वेंट, मैं ऐसी नहीं बोल सकता जैसी इंग्लिश मेरे बच्चे बोलते हैं। 6 साल की बच्ची, 5 साल की, वो क्यों बोल रही? उसने सिर्फ 8 घंटे इंग्लिश को सुना है। तो तुम्हारा बच्चा सिर्फ 8 घंटे इंग्लिश को सुने तो 4 साल की उम्र में वो इंग्लिश बोलता है उसी एक्सेंट के साथ। तो ताज्जुब की बात है कि जो बच्चा अपनी मां की गोद के अंदर 4 साल से कुरान मजीद के 14 पारे सुन रहा है उसे याद नहीं होंगे? वलियों की दुश्मनी में लोग अपनी रूटीन की चीजों को भूल जाते हैं। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह का की तख्ती जब लिखी तो हमीदुद्दीन, काजी हमीदुद्दीन जो बाद में काजी हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर हुए, उन्होंने सुबहान अल्लाह जी लिखा। अल्लाह अकबर। ये थी इस कुदरत। अब खुद सोचिए कि जिनकी रस्म बिस्मिल्लाह में इतने अजीम लोग शामिल हैं, आगे इलम का आलम क्या होगा? अब रस्म बिस्मिल्लाह हो गई, वालिदा माजदा को सोच आया कि मैं आप बेटी को आगे पढ़ाऊं। तो मोहल्ले का खादम जो था उसे कुछ मिठाई और कुछ चीजें दी, कहा जाओ मस्जिद में ले जाओ। आपको मालूम है कि उस दौर में स्कूल जो होते थे ना वो ये मदारिस ही होते थे। अब ये नहीं होता था कि ये गवर्नमेंट का स्कूल है, ये मौलवी का मदरसा, ना वो मस्जिद ही सब कुछ होती थी, वो वही मदरसा है, वो यूनिवर्सिटी है, वो स्कूल है, वही सब कुछ है। तो आप जब खादम लेकर चला तो रस्ते में एक बुजुर्ग मिले, कहने लगे कहां ले जा रहे हो? कहा मैं मोहल्ले की मस्जिद में ले जा रहा हूं, बच्चे को पढ़ाना है, मालिक ने कहा है। कहा सुनो मेरे पीछे पीछे चलो, ये बच्चा कहां पढ़ेगा मैं तुम्हें बताता हूं, वो दूसरे मदरसे में नहीं जाना, आप सीधा शेख असर वली कामिल अबा हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के मदरसा में चलेगा। ये वली कामिल था। आप वो जो बाबा जी ना रस्ते में मिले, उन्होंने बुजुर्ग होंगे, तो अब चूंकि मदरसा करीब था घर के तो वो भी चल पड़े, दूर होता तो सवाल करते। वो कहा इसमें, वो दूसरे में नहीं, इसमें पहुंचो। अंदर गए तो बाबा जो थे रस्ते में मिले, वो कहने लगे इस बच्चे की खास तौर पर तरबियत की जानी चाहिए। ये कहकर वो बाबा चले गए। तो अबा हफ्स रहमतुल्लाह अलैह पूछने लगे खादिम से, तुम जानते हो ये बाबा कौन थे? कहीं मैं तो नहीं जानता। कहा ये खिदर अलैहिस्सलाम थे, मुझे खास तौर पर बता कर गए हैं कि इस बच्चे की तरबियत करना। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पहले उस्ताद उनकी वालिदा माजदा, फिर अबा हफ्स, इसके बाद और हमीदुद्दीन लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये आपके उस्तादों में ये नाम शामिल होते। अब आपने पढ़ना शुरू किया, थोड़े ही अरसे के अंदर आपने बाकी कुरान मजीद भी सारा याद किया। बात तो कहते हैं कि चार दिन के अंदर हमीदुद्दीन लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से ही आपने कुरान पाक मुकम्मल याद कर ली। बाजे को मैंने ये भी पढ़ा। अब आप पढ़ने लगे, जब आप लोकल पढ़ चुके, अब आपके मन में आया कि मैं कुछ ज्यादा पढ़ू, आगे बढ़ो। सोचने लगे किससे पूछूं, कौन मेरी रहनुमाई है, कि मुझे कहां जाना चाहिए, मुझे कोई, मैं रूहानियत में आगे बढ़ना चाहता हूं। आप बुजुर्गों के किस्से पढ़ते थे, किस्से आप पढ़ते थे, महमूद इस्फहानी आपको बड़े अच्छे लगते थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन मेरी चिश्ती क्या कहने उनकी, तो औलिया के तस्करे आपको याद थे और आपको मोहब्बत भी थी उनसे, लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे थे कि किसके पास जाओ। आपको एक दुआ आती थी, वो दुआ पढ़ने के बाद बंदे की खिदर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाती। आपने क्या किया, गांव से निकले, वीराने में एक मस्जिद थी और मस्जिद की एक बुलंद जगह मीनारा टाइप थी जगह, तो दुआ को बुलंदी पे ही पढ़ना होता था। आपने ईशा की नमाज वहां अदा की, नमाज करने के बाद बुलंदी पे चढ़ गए, यानी वो मीनारा जो था, जो भी आप कह लीजिए, उस पर चढ़ के आपने वो दुआ पढ़ी कि जिसके पढ़ने के बाद खिदर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाती। दुआ पढ़ी, पढ़ने के बाद नीचे आ, सारी रात की बातें करते रहे, फजर की नमाज अदा की, नमाज अदा करने के बाद किसी से मुलाकात न की, ना को मस्जिद में आया, आप मस्जिद से बाहर निकला। फजर की नमाज अदा करके जो बाहर निकले तो आगे एक बाबा जी से मुलाकात हो गई। कहने लगे काका इतने वीराने में अकेले फिर रहे हो, क्या हो, क्या कर रहे हो, क्या काम है? कहने लगे बस मुझे एक दुआ आती थी, वो दुआ पढ़ने के बाद खिदर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाती, तो मेरा बड़ा मन चाह रहा था कि वो मिल जाते, लेकिन मस्जिद में तो किसी से मुलाकात हुई नहीं। कहने लगे अच्छा 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 अच्छा, तो तुम खिदर से मिलना चाहते हो, क्यों क्यों मिलना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे रूहानियत हासिल करनी, मैं किसके पास हूं, मैं और अल्लाह के करीब जाना चाहता हूं। थोड़ी देर के बाद एक और बुजुर्ग आ गए, तो वो बुजुर्ग पूछते हैं, दोनों की आपस में बात होने लगी, भाई ये खिदर अलैहिस्सलाम से मिलना चाहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं, इनका मकसद कुछ और नहीं है, इनका मकसद सिर्फ यह है कि मुझे रूहानियत कुछ और मिल जाए, मैं और अल्लाह के करीब हो जाऊं। कहने लगे अच्छा अच्छा ठीक है। तो बुजुर्ग बोले कि तुम इस्फहान चले जाओ, इस्फहान, ये ईरान का शहर, इस्फहान चले जाओ। इतना कहके वो एक रिजालुल गैब से, रिजालुल गैब में से थे, और दूसरे जो है वो खिदर अलैहिस्सलाम ही थे, दोनों गायब हुए। आपने जब सुना कि इस्फहान, इस्फहान जब सुना, उन्होंने सोचा अच्छा अच्छा शायद महमूद इस्फहानी की तरफ इशारा होगा, क्योंकि आप तो खैर उसके दीवाने भी थे, उनके दीवाने भी थे, चाहने वाले भी थे। कहने लगे वाह भाई ठीक है, अब चल पड़े इस्फहान की जानिब, आप चल पड़े इस्फहान की जानिब। आप चले तो खुदा की कुदरत देखिए कि उन्हीं दिनों में इस्फहान के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह तशरीफ लाए हुए थे, और आप जब मस्जिद में दाखिल हुए तो आगे आप जलवा फरमा है, और आप उस महफिल के अंदर बहुत से औलिया कराम भी बैठे हुए और आप तकरीर फरमा रहे हैं। जो ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दाखिल हुए तो आपने चादर ली हुई थी, वो चादर उतार के आपने उनके ऊपर डाल दी। ये चादर का डालना इस बात की अलामत थी और इस बात में दाल थी कि तुम मेरे मुरीद हो। तो जब चादर डल गई तो कहते हैं कि फिर एकदम से मेरे दिल के अंदर उनकी मोहब्बत पैदा हो, उनकी मोहब्बत पैदा हुई, आपने मुझे अपना मुरीद किया। मुरीद करने के बाद मुझे कहा कि तुम 96 रकात नफिल अदा करो, 96 रकात नफल अदा करो। तो एक जगह लिखा है कि आपका यह फिर तरीका रहा, और 3000 मरतबा तुम दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ो। आपने यह अमल जो है वो शुरू कर दिया। अब उसके बाद जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन जुमेरी चिश्ती रहमा अल्लाह वहां ये थी आपकी बात के बाद यह तरीका का। अब इनके साथ साथ जहां ये रहते वहां 32 साल जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन जुमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काजी रहमा अल्लाह से 32 साल बड़े। अब हर जगह साथ साथ जहां वो जाते हैं वहां ये जाते, रस्ते में सीखने को भी मिलता है, सिखाने को भी मिलता है। मक्का में पहुंचे, मदीना में पहुंचे, सफर करते जा रहे हैं, फैज लेते जा रहे हैं और पीर की खिदमत हम आप अल्लाह अकबर जल्ला शान। हम जब मुसलसल आपके साथ मईयत रही तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बारहा इशारा हुआ कि मोइनुद्दीन कुतुबुद्दीन को तुम खिलाफत दे दो, वो जो तबरुकात तेरे पास हैं वो इसे इन्हें अता कर दो। बारहा जब मुसलसल ये चीज एक ही चीज बार बार आई तो आप समझ गए कि यह इशारा सही और जल्दी इसे इस काम को करना है। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन जब आप बहुत दूर से सारे सफर तकरीबन आपने अदा कर लिए, उसके बाद मस्जिद अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ये बुजुर्ग हैं बहुत बड़े, इनके नाम पर ये मस्जिद है बगदाद के अंदर, मस्जिद अबुल लैस के अंदर आप जलवा फरमाए तो वहां जमघट है। शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह ये भी जलवा फरमाए, शेख महमूद इस्फहानी भी वहां मौजूद है, औहदुद्दीन करमानी वहां मौजूद है, शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मौजूद है। ये बड़े बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन जुमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन कुतुबुल अक्ताब बख्तियार काकी औशी सुमा देलवी रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत अता फरमा दी। अल्लाहु अकबर जल्ला शान, ये खिलाफत अता फरमा दी। खलीफा आजम है ख्वाजा मोइनुद्दीन जुमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ये चिश्ती का फसल आपने सुना, ये कभी ध्यान गया आपका कि ये चिश्ती क्या होता है? नहीं गया कभी ध्यान। ये चिश्ती जो है एक सिलसिले का नाम पड़ गया ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बाद, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से पहले भी था ये नाम। उनसे पहले सबसे पहले अबू इसहाक शामी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग हैं कि जिनके नाम के साथ चिश्ती लगता है, ये बात याद रखिएगा। मशहूर हुआ है ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह के बाद, लेकिन सबसे पहले जिसके नाम लफ्ज जिनके नाम के साथ चिश्ती लगा वो अबू इसहाक शामी रहमतुल्लाह, ये शाम के रहने वाले, उनके पीरो मुर्शिद ने इनको भेजा था। ये चिश्त असल में एक इलाका है, टाउन है, कस्बा था चिश्त, मालूम है कहां? ये चिश्त हरात जो है ना, हरात आज भी बड़ा मशहूर है। हरात, हरात कहां है? अफगानिस्तान के अंदर है। तो हरात जो जिला है उसका एक कस्बा है चिश्त। आज भी अगर आप अफगानिस्तान में जाएं और अफगानिस्तान से हरात, हरात के अंदर चिश्त में जाएं तो पुराने खंडहर नजर आएंगे आपको, मदरसों के अमारात नजर आएंगी। उससे आपको मालूम होगा कि उस दौर के अंदर ये चिश्त का इलाका जो है ये सूफिया का मरकज था। आज भी उसकी तस्वीर देखें तो ये चीजें आपको आज भी नजर आएंगी। तो चिश्त जो है ये हरात से ईस्ट की जानिब 177 किलोमीटर 177 किलोमीटर हरात से ईस्ट की जानिब ये आपको इलाका जो है वो मिलेगा। आज भी मरकज है, कभी मरकज होता था ये। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती दोनों, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमा अल्लाह और कुतुबुल अक्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमा अल्लाह हरात पहुंचे। हरात गए, वो अफगानिस्तान के शहर में, वहां से फिर आप लाहौर आए। लाहौर से वहां से ख्वाजा जो है वो दिल्ली की जानिब रवाना हुए। तो दिल्ली से होते हुए आप अजमेर की तरफ तशरीफ ले। तो अजमेर में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमा अल्लाह इनके साथ ने इनकी ड्यूटी कुतुबुल अक्ताब रहमतुल्लाह अलैह की इनकी ड्यूटी दिल्ली में लगाई हुई थी कि तुम वहां रहो, मैं अजमेर रहता हूं। तो ये दिल्ली में उनके हुक्म से रहते थे। तो जब इनको मालूम पड़ा कि आपके मुर्शिद गजनी चले गए हैं तो आपको अपनी वालिदा की याद सताई। तो आपने फरमाया मुर्शिद जब गजनी में गए हैं तो मैं भी जरा जाकर ओश में अपनी वालिदा मोहतरमा से मिला, वालिदा की याद सता रही, आप वापिस आए ओश। वहां आकर वालिदा मोहतरमा को मिले तो हर मां की आरजू होती है कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे बेटे के बच्चे हो, हर मां की आरजू होती है। तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने कहा बेटे तुम शादी कर लो। कहा मां जैसे तेरा हो। तो ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की पहली शादी, आपकी शादी हुई शादी के हंगामा के अंदर मुर्शिद ने क्या बताया हुआ था जब बायत की थी? ज्यादा कुछ, 3000 मरतबा दुरूद शरीफ रोजाना, तो आप उसको रात को पढ़ते थे। तो 3 दिन शादी के हंगामे में दुरूद शरीफ मिस फोत हो गया, पढ़ा नहीं गया, शादी का जोर शोर इतना था। जब वो फोत हो गया तो आपके एक मुरीद थे रईस अहमद, रईस अहमद, ये जुबान जो है वो आम, वो अहमद रह, ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हमारी जुबान के अंदर चलते हैं, लेकिन ये ऐसा इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि हमें मालूम नहीं होता, या जो बोल रहे हैं साहिब उनको मालूम, उनको मालूम होता है, लेकिन क्या होता है कि जुबान के आम जो प्रोनाउंसिएशन चल रहा होता है, वो जैसे अहमद, अहमद नहीं अहमद, रहमत नहीं रहमत, तो मालूम होता है लेकिन वो चूंकि बोलते रहते हैं आम लैंग्वेज के अंदर तो वो ऐसे ही चल पड़ता है। तो रईस अहमद आपके मुरीद जो है वो ख्वाब देखते हैं। ख्वाब क्या है? बहुत एक मैदान, मैदान के अंदर एक खूबसूरत खैमा, खैमे के दरवाजे पे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन मसूद दरबान की दरबार जैसे खड़ा होता है ना वैसे खड़े हैं, तो बाहर आते हैं, वो आदमी की अर्जी लेके जाते हैं, हुजूर इसने मुलाकात करनी है, ठीक है आने दो, ये फलां का ये काम है, ठीक है। तो अंदर खैमे के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमाए, तो अब्दुल्ला बिन मसूद जो है वो अगर किसी की मुलाकात की इजाजत होता है होती है तो फिर वो उसे लेकर जाते हैं, नहीं होती तो आपका हुक्म पढ़कर सुना देते हैं। तो ऐसे हो रहा है, तो रईस अहमद आगे बढ़े, रईस अहमद आगे बढ़े कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता हूं, मेरा नाम यह है, आपकी अर्जी अंदर गई। तो वापिस जब आए अब्दुल्ला बिन मसूद रजी, वापिस आए, वापिस आकर कहने लगे हुजूर फरमा रहे हैं कि तुम अभी उस मर्तबे पे नहीं हो कि तुम्हें अंदर बुला लिया जाए, लेकिन हां तुम एक काम करो कि जाकर कुतुबुद्दीन से यह कह दो कि 3 दिन से तेरा सलाम नहीं पहुंचा, 3 दिन से तुम्हारा तोहफा हमारी बारगाह में नहीं पहुंच रहा। सुबह आपकी आंख खुली। अब इस बात का सिर्फ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को ही पता था। सुबह जब आंख खुली, रईस अहमद उनकी खुली, तो गोए गए जाते, क्या लगे हुजूर रात को ख्वाब देखा है, पैगाम पहुंचाना है। क्या हुजूर फरमा रहे थे कि 3 दिन से आपका तोहफा नहीं पहुंचा। अब यह बात आप ही जानते, एकदम से आप इतने रोए, इतने रोए, उसी वक्त जितना महर था दाऊरी जो अपनी बीवी का महर मुकर्रर था आपने दिया, देने के बाद कहने लगे तेरी वजह से 3 दिन में सरकार की बारगाह में दुरूद नहीं पड़ सका, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं भार उठा नहीं सकता, जाओ महर देकर आपने तलाक दी। ये आपकी पहली शादी। अब आपने वापसी का इरादा किया, औज से आप बगदाद गए। बगदाद जब पहुंचे तो बगदाद आपकी जलालुद्दीन तबरेजी जो है रहमतुल्लाह है उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कि बताया, उन्होंने बताया कि आपके पीरो मुर्शिद वापस अजमेर चले गए हैं। ये उनको खबर, अच्छा वापस चले गए, चलिए फिर मैं भी इरादा करता हूं वापस जाने का। आपने इंडिया का रुख किया, लेकिन बगदाद के अंदर रहते हुए आपने बड़े औलिया कराम से मुलाकात की। ज्यादातर आपकी मुलाकात शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह के साथ, ये बानी है सोहरावर्दी सिलसिले, और काजी हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह के पीरो मुर्शिद है ये, तो इनसे मुलाकात है। इसलिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने उनसे बढ़कर कोई इबादत गुजार आदमी अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखा, अपने सफर में नहीं देखा। अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का सफर तय हुआ, साथ जलालुद्दीन तबरेजी रहमतुल्लाह भी साथ सफर कर रहे हैं। आपको मालूम है कि उस दौर में यह तो नहीं होता था कि गाड़ी में बैठ गया तो गाड़ी सीधी चल रही, बस औलिया कराम चल पड़ते थे, कभी इधर ठहरे कभी इधर ठहरे, मालूम पड़ा रास्ते में कि फलां जगह पे दरगाह है, फलां जगह पे कोई वली कामिल है, फलां गार के अंदर कोई चिल्ले पे बैठा है, तो ज्यारत करने के लिए चले जाते थे, फैज लेते थे, फिर एक जगह आखिर उम्र के अंदर डेरा लगा लेते थे, फिर वहीं फैज पहुंचाते रहते। बड़ा फायदा होता है फिरने का सफर में। मैं जब मुल्कों में जाता हूं मैं भी यही तलाश करता हूं। मैं ओमान में गया अभी भी इंशाल्लाह रहमान अल्लाह को मंजूर हुआ तो मैं माजिल बिन गुदुबा रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी मुस्तफा की कबर देखने की और वहां फातिहा पढ़ने की मुझे सआदत नसीब, फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कबर पर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए मैं स्पेशल तुर्की में गया। मैं तो वहां जाकर फैज मिलता है, बड़ी बड़ी तब्दीली अगर आप इश्क और मोहब्बत से जाएं आप, तो आपको मालूम पड़ा कि एक साहिल बीच साहिल के ऊपर एक खानकाह है, वहां एक बुजुर्ग रहते हैं, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सफर में आते हुए ना वहां भी चले गए, मुलाकात हुई। कहते हैं कि बिल्कुल इबादत और रियाजत और रोजे रख रख के हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। कहते हैं कि जब चाश तक वो इबादत करते थे, चाश के बाद वो उठते थे, उठ के वो सीधा लंगर खाने में चले जाते थे, लंगर खाने में जाकर खुद खाना पकाते, पड़ा हुआ कुछ होता तकसीम करने लग जाते, पकाते जाते देते जाते तकसीम करते जाते, और खानकाह में जितने लोग थे वो सब खाना खाते। यह सिलसिला जुहर तक जारी रहता। और कहते हैं कि खुद उनका आलम यह था कि खुद रोजे से रहते, और अगर कोई आदमी कपड़े मांगने के लिए आ जाता तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कपड़े मांगने के आता तो कमरे में चले जाते, अपने हुजरे में से जाके नया नया न्यू ब्रांड सूट लाकर उसे दे देते। और एक आदमी नहीं, जितने आदमियों को कपड़े चाहिए होते, कोई नंगा होता या उसका लिबास फटा हुआ है तो आप अंदर से नया ही ला के देते, एक दो तीन जितने आदमी आ रहे हैं। और यह ऐलान था आपका कि कोई भी सवाली आए, मैं किसी भी हालत में हूं, मुझे इतना जरूर दिया करो। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं उनके साथ रहा, तो मेरा भी रोजा उनका भी रोजा, रोजा जब खुलता था तो ऊंटी अपनी खुराक क्या थी, चार खजूरें, और वो भी गैब से आती थी, जब रोजा खुलने का वक्त होता तो गैब से चार खजूरें जाहिर हो जाती। तो कहते हैं कि उस दिन उन्होंने वो खजूरें जो है वो खाई, दो खुद खाई दो मुझे दे दी, मैंने खजूरें खाई तो फिर मुझे फरमान लगे अब तुम चले जाओ, सुनिए चले जाओ, लेकिन एक बात सुनो, दरवेश के लिए क्या जरूरी है, ये देखिए ये चीजें होती हैं। इतनी पूरी स्टोरी और सीरत बयान करने के बाद आप बिलीव करेंगे कि मुझे 14 और 7, 21 दिन जो है, 7 + 21, 21 दिन लग गए हैं इसको लिखते हुए, आप बिलीव करेंगे, कैन यू बिलीव। बीच में मैं बीमार हो गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन जमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जो सजादा नशीन है, अभी अभी जो सजादा नशीन है सैयद सरवर चिश्ती साहब, वो तशरीफ लाए हुए थे उनके साथ जलसे, लेकिन फिर भी मुझे 21 दिन लग गए हैं ये लिखते हुए, अभी मुकम्मल करके मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं। तो इसके अंदर हमें चंद जुमले मिलते हैं, अब ये जुमले आपने तलाश करना होते हैं। अब ये जरा सुन लीजिएगा कि आजकल लोग सूफी बड़े जल्दी बन जाते हैं, आपने क्या फरमाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह को, कहने लगे सुनो मेरे प्यारे गौर से सुन, जब तक फकीर लोगों से दूर ना हो जाए, लोगों से दूर ना हो जाए, लोगों के तहाइफ या सोना हो चांदी हो डायमंड हो उसकी नजर में मट्टी के बराबर ना हो जाए, गोशा नशीनी वो इख्तियार ना कर ले, कम खाना कम सोना कम बोलना अपना ना ले, वो अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकते। ये चीज सबके लिए, मैं जितना कुछ बयान करूं, उसके बाद आपने इजाजत ली, फरमाने लगे आप तुम जाओ। तो आप वहां से चले मुल्तान आए, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह मुल्तान पहुंचे, मुल्तान तब मरकज था हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ आपकी दोस्ती रही, बैठे बड़ा सा कयाम किया मुल्तान के अंदर, मुल्तान के हाकिम ने यह कहा कि हुजूर आप यहां रुक जाइए, अब यहां का जुमला सुनिएगा, आपने फरमाया नहीं, कोई मौलवी होता तो कब्जा कर लेता, ठीक है इस मौलवी को निकाल दो और मुझे रख लो। मैं जब अमेरिका में आया आज से 14 साल कबल, तो मुझे एक साहब कहने लगे कि आपको कैलिफोर्निया के अंदर मस्जिद में खतीब रखना है, तो मेरी आदत है मैं पहले पूछता हूं, तब कागज भी नहीं थे कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा तो उस मौलवी में मस्जिद में पहले कौन है, उन्होंने एक मौलवी साहब का नाम लिया, मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा तो मौलवी साहब जब है तो फिर मुझे क्यों नहीं जा रहे, जबकि जब आदमी नया नया आता है तो उसका उसको जरूरत होती है कि जल्दी जल्दी मैं किसी मस्जिद में लग जाऊं ताकि मेरा कार्ड बन जाए कागज बन जाए, तो मैंने कहा मौलवी साहब हैं तो उनको क्यों निकाल रहे हो, कहने लगे जी वो अच्छी तकरीर नहीं करते, तो मैंने कहा कब से हैं वो, तो उसने को काफी साल बताए, तब बताए उसने को 14-15 साल बताए, तो मैंने कहा अच्छा 14-15 साल वो ठीक तकरीर करते रहे और अब उनकी तकरीर खराब हो गई है, जाओ मुझे नहीं जाना तुम्हारे यहां, जब तुमने पुराने की कदर नहीं की तो हमारी कदर कब करोगे, मैंने कहा ना उनको मत निकालो। तो अब ये होता है कि एक आदमी एक जगह पर काम कर रहा है, ये हमने तसव्वुफ में सीखा है, अल्लाह ताला ने फिर मुझे ह्यूस्टन भेज दिया बेहतर जगह, फिर मैं वहां बहुत दफा तकरीर करने कैलिफोर्निया भी गया हूं। ये मौलवी कोई होता तो वो कबाचा की बात मान लेता, लेकिन जवाब सुनिए ख्वाजा खुद ये है, इसलिए प्यार किया जाता सूफिया से, ख्वाजा खुद बुद्धि बख्तियार काकी रहमतुल्लाह कहने लगे नहीं हम मुल्तान नहीं रुकेंगे, क्यों, ये इलाका बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी का है, ये बहाउद्दीन जकरिया की विलायत में दे दिया गया है, हम यहां नहीं रुकेंगे। और मैं एक और बात बताऊं आपको, बहुत से लोगों ने मुल्तान के अंदर कहा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह से कि आपकी हम बायत करना चाहते हैं, फरमाया लगे मुल्तान की बाउंड्री के अंदर मैं किसी को अपना मुरीद नहीं बनाऊंगा। सुना आपने, ये होते हैं सूफी, मुल्ला इनके बराबर इनके पांव के बराबर नहीं हो सकता, फरमाया लगे मैं मुल्तान अब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात भी इसी जगह हुई है लेकिन मुरीद नहीं किया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह जब मुल्तान में दाखिल हुए तो आपकी आदत थी फजर की नमाज इशराक اشراق پڑھ کر تو آپ نکلے، چاشت آپ کو پڑھنا تھی. تو منہاج الدین ترمذی کی مسجد جو ہے اس مسجد میں داخل ہوا اشراق چاشت پڑھنے کے لیے. آگے جو لڑکا بیٹھا ہوا تھا وہ کتاب پڑھ رہا تھا. جو ہی قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ ملتان کے اندر منہاج الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں داخل ہوئے، وہ لڑکا کھڑا ہو گیا. کھڑا ہوا تو چہرے کو دیکھنے لگے. آپ نے چاش کی نماز ادا کی، وہ لڑکا کھڑا رہا. اور جب وہ چاش کی نماز پڑھ کے جانے لگے نا، تو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بیٹے کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا جی نافع پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام ہے. فرمانے لگے ہاں تمہیں بہت نفع ملے گا. تو وہ لڑکا قدموں میں گر گیا، حضور مجھے بیعت کر لیجیے. ہم نے فرمایا نہیں. معلوم ہے یہ لڑکا کون تھا؟ یہی بابا فرید الدین گنجشکر ہے. لگے نہیں نہیں نہیں، بیعت نہیں کرنا. ہاں تم پڑھو بخارا اور سمرقند بغداد جاؤ، پڑھو، پڑھنے کے بعد دہلی آنا، تب بیعت کریں گے تمہیں. اور آج کے دور میں کیا ہے، یہ بیعت کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے فرماتے تھے یہ سارا ملتان کا علاقہ بہاؤدین زکریا کی ولایت میں دے دیا گیا ہے، اب جو یہاں مرید ہوگا وہ ان کا مرید ہوگا. یہ ہے تصوف، یہ ہے صوفیزم. ملتان سے آپ لاہور آئے، لاہور سے آپ دہلی روانہ ہو گئے. دہلی جب آپ پہنچے تو وہاں کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش، اب اس کو ایک جگہ میں نے التتمش بھی پڑھا ہے، التتمش، التمش تو خیر ٹوٹلی غلط ہے، التتمش بھی پڑھا ہے، تمش بھی پڑھتے ہیں، خیر جو بھی ہے بات سمجھ میں آنی چاہیے. دہلی کے بادشاہ نے آپ کا استقبال کیا اور عرض کرنے لگا، حضور آپ میرے محل میں ٹھہریے. یہ بادشاہ ہے خاندان غلامہ میں، جو ایک عظیم نام ہے، جب وہ بادشاہ بنے ہیں تو ان میں یہ ایک نام آتا ہے. آپ میرے محل میں رکیے. فرمایا نہیں نہیں، میں تیرے محل میں نہیں رکوں گا، میں ڈھونڈتا ہوں کسی گاؤں میں، کسی تنہائی میں، کسی جگہ میں جا کے رکوں، میں تیرے محل میں نہیں رکوں گا. تو کلو کری، اب اس کا کوئی بھی پروننسی ہو سکتا، کسی نے رے بھی لکھا ہوا ہے، کسی نے ہا بھی لکھا ہوا ہے، لیکن انگلش میں آج کے دور کے اندر اگر آپ اس کے سپیلنگ پڑھیں گے، KILOKRI، کھیلو کھڑی، جو بھی خیر بنتا ہے. تو یہ نیو دہلی کے قریب ہے، یہ تقریباً 10 مائل دور ہے نیو دہلی سے، 10 مائل، 18 منٹ لگتے ہیں اگر آپ کو وہاں سے نیو دہلی آنا ہو یا نیو دہلی سے وہاں جانا ہو، 18 منٹ ٹیکسی میں جاتے ہوئے. اور رات کے وقت ٹیکسی میں اگر آپ جائیں گے تو ٹیکسی والا تقریباً، اگر وہ اے سی کی ٹیکسی نہیں ہے تو 150 روپے انڈین لیتا ہے، رات کے وقت کی بات کرو، دن کی نہیں ہے. تو آپ نے وہاں جا کے ڈیرا لگایا. تو بادشاہ جو ہے وہاں ہفتے میں 2 بار آتا تھا، 2 بار دہلی کا بادشاہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے 2 بار آتا ہے. میرا دل کرتا میں روز آؤں، وہ روز آنے لگے. پہلے ہفتے میں 2 بار آتا تھا، پھر دہلی کا بادشاہ روزانہ آنے لگا. جب روزانہ آنے لگا تو آپ کو پتا کہ عام آدمی کا جانا، تو دہلی کا بادشاہ جب جا رہا ہو تو کتنے 7 آدمی، پھر اس کو کام کتنا چھوڑنا. عرض کی حضور آپ یہ دہلی شہر کے قریب نہیں آ جاتے؟ میرے معاملات کچھ تھوڑے سے وہ بھی ہیں حضور، آپ کو بھی دقت ہوتی ہوگی، وہاں قریب ہوں گے تو ملاقات تھوڑے سے منٹ میں ہو جایا کرے. آپ نے قبول فرمایا. کہنے لگے ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو ہم جاتے ہیں، ہم تیرے محل میں نہیں جائیں گے لیکن ہم شہر کے قریب آ جاتے ہیں. تو آپ پھر وہاں سے مہرولی میں آ گئے. اس کے پروننسیشن بھی چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کا ایک پروننسیشن جو ہے وہ مہرولی. یہ جو دہلی ہے نا، جس کو دہلی کہتے ہیں، یہ دہلی 7 پرانے شہروں کو ملا کر ایک بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 7 قدیم جو شہر تھے ان میں سے ایک مہرولی بھی ہے. وہاں آ کر آپ نے ڈیرا لگا لیا. جب یہاں ڈیرا لگا، یہاں آپ نے دوسری شادی کی. دوسری اقتباس الانوار میں ہے کہ ان سے جو آپ نے شادی کی، ان سے 2 لڑکے ہوئے، شیخ احمد اور شیخ محمد. یہ ایک بات یہاں عرض کرتا جاؤ، ایک شیخ ہوتا ہے پروننسیشن، ایک شیخ ہوتا ہے پروننسیشن. شیخ کاسٹ ہے، شیخ یہ عہدہ ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے، رینک ہے. ویسے شیخ کا معنی بھی کیا گیا، شیخ اسے کہتے ہیں کہ جو جس کی عمر 60 سال سے اوپر ہو. ایک معنی شیخ کا یہ کیا گیا جو پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دے، इसीलिए शेख अब्दुल कादर जिलानी कहा जाता है। तो शेख जो है ये पीरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तब शेख बोलेंगे, इसे शेख नहीं बोलेंगे, शेख। तो शेख अहमद और शेख मोहम्मद ये दो आपके बेटे हैं, और शेख मोहम्मद जो है 7 वर्ष में इनका इंतकाल हो गया। तो आपकी नस्ल जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह की, ये शेख अहमद से चली, जो बाद में ख्वाजा अहमद तमाची के नाम से मशहूर हुई। आपकी गुजर बसर, पहले आप एक नान भाई की दुकान के साथ रहते थे, नान भाई के उसका घर भी था, दुकान भी थी, वहां उसके साथ रहते, फिर आपको ख्वाजा हमीदुद्दीन काजी हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह अपने घर ले, कुछ याद आया काजी हमीदुद्दीन नगोरी रहमत सादे मोहतरम, या ये आपको अपने घर ले गए, ये यहां कहां आ गए? तो अगर काजी हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह अलैह का कुछ वाकया और उनके बारे में कुछ बयान ना हो जाए तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का पूरी स्टोरी जो है वो तिशना रह जाएगी। हमें अरज कर जो, क्योंकि हमने बचपन से एक ही वाकया सुना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह वो तख्ती वाला, तो काजी हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पता ही नहीं वो कौन है। तो काजी हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह अलैह सोहरावर्दी हैं, पहली बात तो याद रखिए। और आपका नाम मोहम्मद बिन अता है, आपके अब्बा अताउल्लाह बुखारी हैं, आपके वालिद ग्रामी का नाम अताउल्लाह बुखारी, और आपका अपना नाम मोहम्मद है, हमीदुद्दीन नगोरी के नाम से मशहूर हुए। आपके वालिद ग्रामी अताउल्लाह ये बुखारा के बादशाह थे, जब बूढ़े हो गए तो आपने कहा चल अपने बेटे से ये बोले, मोहम्मद बिन अता से बोले, मोहम्मद से कह लगे तुम बादशाह को संभालो बुखारा की, तो आप बादशाह बने। अब हम जरा अंदाजा लगाइए कि जो बादशाह बन रहा है कितना नॉलेज होगा उसके पास। तो मुरवजा उलूम सारे पढ़े, पढ़ने के बाद बादशाह बने, बेहतरीन ठीक तरीके से हुकूमत चला रहे थे। यह मैं काजी हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह की बात कर रहा हूं, तो ध्यान से जरा सुनिए। आप बुखारा के बादशाहों में से हैं, तो अब्बा ने अपने जीते जी ही हुकूमत बेटे को दे दी। अब बेटा हुकूमत ठीक तरीके से चला रहे हैं, बड़ी खूबसूरती से। आपकी जोजा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। जब आपकी जोजा मोहतरमा का इंतकाल हुआ ना, तो मौत से पहला तारुफ हुआ आपका, बात कोई दिमाग को लग गई, गमगीन रहने लगी हर वक्त। वो फलसफा है मौत और मौत और जिंदगी, ये सारी चीजें ऐसी दिमाग के अंदर इकट्ठी हुई। आपने बस बोला बा छोड़ बुखारा की सल्तनत को, छोड़ चल चलें किसी और दुनिया की जाने निकल दें, उसे तलाश करते हैं कि जो इन झंझटों से निकाले। तो काजी हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह नाम इनका मोहम्मद है, ये बुखारा की सल्तनत छोड़कर बाप बेटा और सारी जितने भी बाकी थे छोड़ गए, किरमान की जानिब निकल गए। अब बात की समझ में आई? तो वहां किरमान में जब पहुंचे, वहां ख्वाजा अबू बकर किरमानी रहमतुल्लाह अलैह के पास रहने लगे। वो इनकी तरबियत करते करते उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता भी दे दिया, अपने शादी की, लेकिन अभी कुछ तलब बाकी है। काजी हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह, अभी इनका नाम काजी हमीदुद्दीन नहीं पड़ा, अभी इनका नाम मोहम्मद बिन अताई है, किरमान में रहने लगे। वहां बेचैनी बढ़ती गई। ख्वाजा खिदर अलैहिस्सलाम आप तशरीफ लाए, फरमाने लगे जाओ बगदाद में चले जाओ, तुम्हारा सामान वहां तैयार है। तो ये मोहम्मद बिन अता किरमान से बगदाद पहुंचे, बगदाद में शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह आपने इनको अपनी बात मुरीदी में ले ली। 12 साल तक इनको अपने पास रखा, 12 साल तक इनकी तरबियत फरमाई आपने, कुछ समझ आ रही है? 12 साल तक तरबियत करने के बाद आपने इनको खिलाफत अदा फरमाई, वहां कुछ अर्सा कयाम किया, तो फिर इनको हुक्म हुआ कि जाओ ओश चले जाओ। आप समझ आए? तो तब ये उनके दरबार में थे कि जब हुक्म हुआ कि ओश जाओ और जाके कुतुबुद्दीन बख्तियार काजी को बिस्मिल्लाह पढ़ा कराओ, रस्म बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह तो खैर वो पढ़ चुके थे, रस्म बिस्मिल्लाह वहां होनी चाहिए। तो वहां से ओश रवाना हुए। मोहम्मद बिन अता जो हैं, इनको मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हमीदुद्दीन का लकब अता किया। फिर ये वहां से दिल्ली आ गए, इनकी दोस्ती ख्वाजा मईनुद्दीन मेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से हुई, फिर और भी, ये वहां से दिल्ली आ गए। दिल्ली जब आए तो यहां आकर दिल्ली के बादशाह ने आपको नगोर का काजी बना दिया, काजी हमीदुद्दीन नगोरी। आपको समझ में आ गई आपको बात? तो काजी हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह अलैह ये बादशाह हैं और सिलसिले में सोहरावर्दी सिलसिले में, और दिल्ली में आए तो सुल्तान शमसुद्दीन ने इनको नगोर का काजी बना दिया। काजी जब बनाया इनको तो ताल्लुकात तो पुराने थे। तो जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वहां पहुंचे तो इनको अपने घर ले गए। मसला बड़ा अजीब था, हैं ये उस्ताद बादशाह हैं, काजी हैं, लेकिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह की इज्जत इस तरह करते हैं, इस तरह इज्जत करते हैं जैसे ये उस्ताद हैं। और आपने बस 10 साल जिंदा रहे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह के विसाल के बाद, तो आपने वसीयत की मुझे इनके पांव में दफनाइएगा। अल्लाह अकबर, तसव्वुफ की दुनिया देखी कितनी प्यारी है। कहा इनके पांव में मुझे दफनाइए। अब बेटों को तो बुरा लगा ना, काजी हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह अलैह, यार क्या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह के पांव की जानिब दफना दे। तो उन्होंने क्या किया, जगह को जरा ऊंचा कर दिया, तो चलो जगह तो ऊंची हो जाए। अब जगह को जब ऊंचा कर दिया, अब दफनाया, तो रात को ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाने लगे हम मेरे बच्चों मेरे बेटे होकर तुमने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह के सामने मुझे तुम्हें रुसवा कर दिया। अल्लाह अकबर, जल्ला शान, तुमने मुझे रुसवा कर दिया। बच्चे रोते हुए आए, उसको गिराया और फिर आपकी कब्र मुबारक नीचे की। तो आज भी आपका रोजा, कुछ बात समझ में आ गई। तो ये हैं मोहम्मद बिन अता जो काजी हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुए, ये आपके उस्ताद हैं। तो इनके घर में कुछ देर रुके, उसके बाद इन्हीं के घर के अंदर महफिल जमा करती थी, महफिल समा। अब यहां जरा देख लीजिए, सोहरावर्दी कादरियों के साथ मिलते जुलते हैं, सोहरावर्दियों के नजदीक समा नहीं होती, लेकिन काजी हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह अलैह समा टिका के सुनते थे। आपके घर के अंदर समा होती, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तो तेरी चीज थी। अब समा होती, बुलाया जाता लोगों को। अब जितने काजी थे, दूसरे मुल्ला जो लोग थे, वो आप पर एतराज करते कि ये समा बिदअत है, शिर्क है, हराम है, नजायज है, ये है। आपने एक दिन, और काजियों ने कान भर दिए सुल्तान के भी, तो आपने एक दिन महफिल सजाई, महफिल समा, तो आपने फरमाया काजी सईदुद्दीन, काजी मिनहाज, काजी सिराज, काजी इमाद, काजी सैयद मुबारक, सब बुलाओ। महफिल उरूज पर थी महफिल समा, सारे काजी बुला लिए जितने काजी थे एतराज करने वाले। अब ये सोहरावर्दी होकर काजी कुतुबुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और काजी, महफिल समा जब उरूज पे हुई तो दोनों को जब वजद आया तो सबके सब लोगों ने कान पकड़ लिए जितने काजी थे, और माफी मांगी कि हुजूर आप जो कहते हो वाकई आपके लिए ये सही। कुतुबुल अख्ताब का आपको पीर मुर्शद की तरफ से लकब मिला, बख्तियार आपके मुर्शद बुलाया करते थे, काकी ये खास लकब है जो बहुत कम, बाकी तो मिलते रहते हैं, कुतुब का नाम आप बड़े लोगों के साथ सुनेंगे। ये लफ्ज काकी जो है ना, ये इन्हीं के साथ है, एक खास इम्तियाजी सना है। तो ये काकी का माना क्या होता है, काकी का माना होता है काक नान रा काक मी गोयंत, ये जो नान होता है ना, नान रोटी, रोटी को काक कहते, तो काकी रोटी वाला। अब इसके पीछे क्या मिथ, इसके पीछे क्या स्टोरी है कि ये इम्तियाजी हैसियत क्यों इख्तियार कर गया, क्या जिंदगी में एक बार हुआ, नहीं ऐसा नहीं हुआ, एक बार नहीं हुआ, ये वाकया को जिंदगी में कई बार हुआ है कि जो आपके नाम का हिस्सा बन गया है। तो रोटी वाला क्या चक्कर क्या है, तो सुनिए, आप जब रहते थे दिल्ली के अंदर तो शुरू शुरू में फतूहात कम थी, बादशाह हालांकि आपका गुलाम है लेकिन आप उससे कुछ नहीं लेते। हमसाया है बुकाल, उससे उधार ले लेते रोटी पकती घर की। तो आपको बोलूं मैं कि जब औरतें बातें कर रही हो तो कोई ना कोई बात चल पड़े तो तानाजनी भी शुरू हो जाती बीच में, कोई बात पता नहीं क्या हुई होगी कि बुकाल की बीवी ने कह दिया ख्वाजा साहब की जोजा मोहतरमा से कि अगर हम आप लोगों को कर्जा ना दें तो आपके घर में रोटी भी ना पके। आपको बात बड़ी अजीब सी लगी, आपने आकर कहा, फरमान लगे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम यूं किया करो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ने के बाद वो जो अंदर ताक है ना उसके ऊपर हाथ बढ़ाया करो, तुम्हें घर की फैमिली के जितने अफराद हैं ना वो जितनी रोटी चाहिए होंगी वो तुम्हें ऊपर से मिल जाएंगी, बस तुम इंटेंशन नियत करना कि मुझे घर में इतनी रोटी की बंदों के लिए जरूरत है, जितने घर में बंदे होंगे बस उनके लिए, तो हाथ बढ़ाओगी तो रोटी मिल जाएगी। तो वो जब हाथ बढ़ाती तो जो इंटेंशन लेती कि इतने बंदे हैं घर के, बाहर का नहीं घर का सिर्फ, तो वो बढ़ाती उतनी ही रोटी ऊपर पड़ी होती। ये बड़ा ऐसा जब बुकाल से कर्जा पिछला उतार दिया आगे ना लिया तो फिर मुलाकात हुई, हम साया तुझे, अब आप लोग हमसे रोटी नहीं लेते, कर्जा नहीं लेते, रोटी कैसे खाते हो, तो आपके मुंह से निकल गया। फरमान लगी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ताक के ऊपर उतनी रोटियां मिल जाती, तो काक ना नरा काक मी कोई अंध। तो काक रोटी को कहते हैं, ये एक। इसके बाद और वाक्य, अब ये नहीं, ये तो घर का वाक्य है, इससे क्या मशहूर कर देंगे भाई। एक और वाक्य हुआ फिर, और ये वाक्य बहुत मशहूर हुआ, ये हौज़े शमसी के किनारे पे हुआ। ये हौज़े शमसी क्या है? हौज़े शमसी के मुतालिक मालूम होगा तो आगे करामत पता चलेगी। हौज़े शमसी क्या है? हौज तालाब को कहते हैं, शमसी शम्स सुल्तान शमसुद्दीन शमसी या निस्बत की। तो ये हौज़े शमसी क्या है? हौज़े शमसी ये है कि सुल्तान शम्स शमसुद्दीन दिल्ली का बादशाह सोया हुआ है कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, आप घोड़े पर जलवा फरमाए, तो आप उसे ये कहते हैं कि शम्स तुम यहां ये इस जगह के ऊपर जो है उसे इशारा फरमाया, घोड़े के ऊपर जलवा फरमाए और यूं इशारा करते कि यहां तालाब बनाओ। ज्यारत की चले गए। अब बादशाह दिल्ली आपको मालूम है ना कि वो तो रोजाना हाजिरी देता था, तो उसने पैगाम पहुंचाया पहले कि हुजूर मुझे ख्वाब बयान करना है आपसे, तो मैं आ रहा हूं, मैंने ख्वाब देखा है, क्योंकि वो टाइम से भी पहले वो ख्वाब बताना चाहता है, जल्दी आ, तो मैं हुजूर आ रहा हूं बस कदम उसी के लिए। तो जो पैगाम लेकर आया था, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रमानों से कहा, जाओ उसे जाके कह दो कि मुझे पता है कि तुझे ख्वाब क्या आया है, चल मैं भी वहां पहुंच रहा हूं, तू भी पहुंच, तू भी वहां पहुंच, मैं भी पहुंचता हूं। तो अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रमौला उसी जगह पे पहुंच गए जो रात को जगह देखी थी शमसुद्दीन अल्तमिश ने देखी थी। अब वहां पहुंचे तो जिस जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, यानी आप घोड़ा मुबारक पे सवार थे और वो घोड़े के सुम उस जगह पे लगे हुए थे, ऐन उसी जगह के करीब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रमौला खड़े। तो जब बादशाह पहुंचा तो आपने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सवारी के निशान है वो ये है, यहां से खोदो। तो जो ही खोदा तो नीचे से पानी निकल आया चश्मा। जब चश्मा निकल आया तो अब यहां हौज जो है वो बनाया। 5 एकड़ रकबा है उसका, 5 एकड़। तो वो जो हौज था ना, वो जब हौज बन गया तो इसके गिर्द जो है वो बैठा करते। तो चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक का निशान था, तो इसलिए जितने भी औलिया कराम थे, जो सूफिया थे, वो सारे कभी कभी उसके गिर्द बैठ जाते, सरकार की बरकत। इसे हौज़े शमसी समझ में आया। अब करामत सुनी। तो हौज़े शमसी, सर्दी की रात, सर्द हवा चल रही है, हौज़े शमसी के किनारे के ऊपर औलिया कराम बैठे हुए हैं। तो अमीर खुसरो को जवाब दिया निजामुद्दीन औलिया ने कि काकी क्यों मशहूर हुए, ये उनकी तरफ से मैं रिवायत ला रहा हूं। तो आपने फरमाया कि जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह हौज़े शमसी के किनारे पर बैठे हैं तो लोगों ने यह कहा सर्द हवा चल रही है, अगर गर्म रोटी मिल जाए तो क्या कहने। आपने फरमाया अच्छा, तो आप उसी जगह की जानिब बढ़े जहां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, तो वहां से गर्म गर्म रोटी पकड़ते जाएं और देते जाएं, पकड़ते जाएं देते जाएं, कपड़े पकड़ते जाएं। सर्द हवा चल रही, तो पानी के अंदर से जब आप चीज लेते हो ना, रोटी गर्म भी होगी तो ठंडी और खराब हो जाती है। सर्दी में पानी तो ठंडा होगा ना, तो ठंडे पानी में से रोटी निकालोगे तो क्या होगा, एक तो रोटी खराब हो जाएगी, रोटी ठंडी हो जाएगी, रोटी खराब भी नहीं हो रही और रोटी ठंडी भी नहीं हो रही, आप गर्म रोटियां पका के दे। ये लो, तो काकी मशहूर हुए। दो आखिरी सुन लीजिए, वैसे तो बहुत सारी। एक और रोटी का वाक्य, क्योंकि एक वाक्य से मैं ये सोचा करता जब भी बचपन से सुनता, मैं ऐसा नहीं हो सकता वो एक वाक्य हो तो वो नाम का हिस्सा बन जाए। ये मैं चंद सुना रहा हूं। काजी हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह अलैह, आपके उस्ताद मोहतरम, उनके घर में महफिल समा है। तो कहा कि महफिल उरूज पर चल रही है, खुद सोरा वर्दी है लेकिन महफिल सिमा के दिलदादा है, और उसके लिए आपको बारहा काजियों का सामना करना पड़ा, दिल्ली के अंदर भी और बगदाद के अंदर जाकर। दिल्ली के काजियों ने तो चैलेंज कर दिया, हमीदुद्दीन नगोरी को मोली मुल्ला तो नहीं, को मौलवी तो नहीं ना, जिसको काजी लिताड़ देंगे, आप तो बुखारा के बाद चाह रहे हैं, जरूरत है इनकी। तो कहने लगे, काजी साहब ने कहा मैं तो सुनूंगा। कहने लगे अच्छा, फिर जाओ बगदाद में जाकर सुन के दिखाओ, फिर हम माने आपको। आपने बगदाद जाकर समा करवाया, काजी हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह अलैह, बगदाद जाकर समा, और मजामीन कैसा। खैर, तो काजी हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह अलैह कि हां महफिल समा चल रही। अब जब महफिल समा खत्म हुई, लोग तो जमा हो गए। काजी साहब कहने लगे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह से कहने लगे, भाई ये तो लोग जमा हो गए, अब इनको रोटी कौन खिलाएगा, अब गर्म गर्म रोटी हो जाए, साथ हलवा हो जाए, हलवा मीठी कोई चीज हो जाए। मैं लगे अच्छा, तुम इस तरह करोगे इनकी लाइन लगा दो, इनको कहो कि कितार के अंदर बैठ जाओ। तो जितने महफिल समा सुनने के लिए आए हुए थे वो सब कितार के अंदर बैठ गए। जब कितार में बैठे तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह इस किनारे पे खड़े हो गए। लोग यूं बैठे ना, जैसे आपने कभी देखा रोजा खोलते हुए लोग बैठते, यूं बैठे। आपने अपना दामन लिया आस्तीन, आस्तीन को लेकर आपने यूं झाड़ दिया। जब आप झाड़ते तो दो रोटियां और हलवा उस आदमी के सामने होता, यूं आस्तीन को झाड़ते दो गर्म रोटियां और हलवा उसके सामने होता। जितने महफिले समा में आए थे सबको खाने को रोटी मिल गई। अब आप समझिए काकी, आइए फिर एहतराम से नाम लेते हैं, सैयद सैयद कुतुबुल अख्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओशी सुमा देलवी रहमतुल्लाह। तो ये काकी की अब आपको समझ आ गई होगी। तो शब रोज आपके कैसे गुजरते, वली ऐसे नहीं बनता। एक बात याद रखना, बेईमान और बेअमल वली नहीं बन सकता। वो फ्राडिया होगा, दो तीन साल के बाद उसका मसला क्लियर हो जाएगा। यहां अमेरिका के अंदर बहुत लोग फ्राडिया आते रहते हैं। मेरी तकरीर रेडियो पे रोज होती थी, आप भी जो सुनते हो, तो मेरी तकरीर से पहले, क्योंकि मेरी तकरीर होती पीक टाइम पे होती, सब लोग सुन रहे होते, तो मेरी तकरीर से पहले तीन जुबानों में उसके कमर्शियल नशर होते, कमर्शियल तीन जुबानों के अंदर, इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर, गुजराती के अंदर। बड़े बड़े लोग उसके बाद मेरे अपने हिसाब से चले गए। तो मुझे आगे बताने लगे, जी वो यूं हाथ करता है, अंडा उसके हाथ में आ जाता। मैंने कहा ये शोभदेबाजी हमने बचपन में की हुई है कि ऐसे हाथ करना। मैंने उसे पूछा, मैंने कहा जब हाथ करता तो पीछे अंधेरा होता ना? बोले हाँ। मैंने कहा ये चीजें तब मैं छोटा था ना, दसवीं में पढ़ता था, ये सारी चीजें तब मैंने की है, ऐसे हाथ करना, लिख देना तो नजर ना आए, ये कर देना वो कर देना, ये कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। ये अभी ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जो सज्जादा नशीन से सरवर चिश्ती साहब आए हुए थे, तुमसे बात मेरी हो रही थी, कहने लगे यार आजकल लोगों का अजीब ईमान हो गया। एक तो हर आदमी ये समझता है कि मुझ पर जादू हो गया है। ओ भाई अल्लाह ताला से दुआ करो, इबादत करो, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ते हैं नहीं और वजायफ करते हैं नहीं, वो टेंशन बढ़ती 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 बीमारी बन जाती है, तो बोलते हमारे पे जादू हो गया। हो, जादू होता है लेकिन इतना आम नहीं है। अगर आप लोग नमाज पांच टाइम पढ़ते हो ना तो यकीन जानिए कोई बहुत बड़ी आफत होगी तो आई, अदरवाइज छोटी मोटी तो ये वैसे ही आपसे डरती नहीं। तो अल्लाह की इबादत शुरू करो यार, कुरान मजीद पढ़ो, क्यों धोखेबाजों के आगे लगे रहते हो? तो आप बेअमल और बेदीन आदमी कभी वली नहीं बन सकता। अब जरा सुन लो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह का अमल क्या? आप हाफिज़े कुरान थे, रोजाना एक कुरान आप फर्ज नवाफिल तहज्जुद सारी 24 घंटे के अंदर एक कुरान मजीद जरूर खत्म करते थे। हम लोग तो जब नमाज पढ़ेंगे कुल बार बार वही नहीं, पूरा कुरान मजीद सुबह से काम शुरू हुआ है तहज्जुद से, अब पढ़ते जाएंगे पढ़ते अगले तक, तो पूरा कुरान मजीद की तिलावत रोजाना होती नवाफिल। इसके 3000 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना होता था, और दुरूद शरीफ क्या पढ़ते थे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। आपका दुरूद शरीफ जरा सुनिएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व नबीका व हबीबिका व रसूलिका नबीयिल उम्मी व आलिही वसल्लम। इसको पढ़ते थे 3000 मरतबा, और हुजूर की बारगाह में ये बचपन से ही कबूल था, चूंकि शुरू से ही पढ़ते थे। रात के इब्तदाई हिस्से में थोड़ा सा सो लेते, उससे जरा पावर मिल जाती है, फिर अगले हिस्से उठ जाते, तिलावत करते, उसमें जिक्र भी होता, जिक्र जली होता, पोशीदा जिक्र भी करते, बुलंद आवाज से भी जिक्र करते, नवाफिल के मशगूल, कम बोलते, कम खाते, कम सोते, शुरू से ट्रेनिंग। गोशा नशीनी आखिरी उम्र में तो बहुत बढ़ गई, वो तो ज्यादा बढ़ गई। इस्तगराक की कैफियत जो है वो आपके ऊपर तारी है। ये इस्तगराक क्या होता है? बाद का तो सोच में कहीं आदमी सोच के जरिए से गुम होता है, ये याद रखिएगा, किसी सोच के ऊपर यूं, और उसको कुछ खबर नहीं होती कि क्या हो रहा ये। और दूसरी कैफियत, ये मैं एक आम बता रहा हूं वैसे तौर पर, दूसरी कैफियत की चीज नजर आ जाती है। आप देख रहे बाजार जाते हो तो चीज देख लें तो देखते ही रहते हैं एक, तो ये दोनों कैफियत होती। कभी सोच में अटक जाता है आदमी अल्लाह ताला की कोई मारिफत कोई चीज, और कभी जो है वो उसका नूर उसकी तजल्ली में, इस्तगराक की कैफियत जो है वो तारी है। आलम इस्तगराक के अंदर रहते बाहर आते नमाज के वक्त, नमाज पढ़ते उसके बाद फिर आलम इस्तगराक के अंदर आप चले जाते। फक्र गिना का आलम क्या है? ये वली कामिल जो होते हैं दौलत बेतहाशा होती है, पल्ले श्री रखते हैं, सब तकसीम करते हैं। दिल्ली का बादशाह आपका मुरीद है, एक मरतबा उसने क्या किया कि चलो खानकाह में रोज खाना पकता है, 6 गांव खानकाह के नाम लगा दिए, और एक पूरा तश्त भरा हुआ अशरफियों का लाके रहे। 6 गांव मामूली नहीं है, 6 गांव नाम लगाने का मतलब मालूम है क्या? यानी 6 गांव के अंदर जितनी भी जमीन है उस जमीन के अंदर जितनी फसल उगेगी वो फसल बेचकर सारा खर्चा खान का पूरा करेगी। अब आप समझिए ये मतलब होता था 6 गांव तेरे 7 गांव तेरे, तो 6 गांव इनके नाम लगाए जाए आपने। तो जब फरमान पढ़ा और वो तश्त सामने पड़ी, फरमाने लगे वापस ले जाओ। राहुल राहतुल कुलूब में ये जुमला लिखा है कि मेरे मुर्शिद ने ऐसी चीजें कबूल नहीं की तो मैं इनको कबूल करके क्या कयामत के दिन उनके सामने रुसवा हो जाऊं, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको, मुझे ये 6 गांव नहीं चाहिए, जाओ मुझे अपने मुर्शिद की दुआ है, मेरी खानकाह के लिए 6 गांव की जरूरत नहीं। अब जरा सुन लो जो मैंने किताबों में पढ़ा है। बाबा फरीदुद्दीन खुद फरमाते हैं, वो इनके मुरीद है ना खलीफा आजम, वो फरमाते हैं कि तवक्कुल कुतुबुल अफ्ताब जैसा मैंने किसी में नहीं देखा। कोई वर्जी खाने का खर्चा कैसे चलता था, अल्लाह अकबर जल्ला शान, कोई आता कि आटा चाहिए, दाल चाहिए, फलांची चाहिए, मुसल्ले का किनारा उठाते, नीचे से चर्बियां उठा के दे देते, जाओ। अब मुसन्निफ भी है, अपने किताबें भी लिखी। इस किताब में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अपने पीर मुर्शिद ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह के मलफूजात लिखे, ज़ुब्दतुल हकायक रिसाला और एक मसनवी, ये भी आपकी तरफ मंसूब है, और एक दीवान है जो शाया हुआ है, कहते हैं कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फारसी के अंदर इसे लिखा। और जिस तरह आपने अपने पीर के मलफूजात जो है वो नकल किए, इसी तरह आपके मलफूजात बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने फवायदुस सालिकीन के नाम से जमा किए, तो ये भी आप ही की किताब हुई। फिर मुर्शिद कौन होता है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन फरमाने लगे मुर्शिद कौन होता है, ये बातें हैं जरा सीखने वाली कि मुर्शिद कौन होता है। तो कुतुबुल अफ्ताब फरमाते हैं कि मुर्शिद के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि जब तालिब उसकी खिदमत में आए, बात के लिए हाजिर हो, तो एक ही निगाह के अंदर तमाम दुनिया की गलाजतें उसके दिल से धो डाले और नफरत पैदा कर दे, खत्म कर दे, और दिल को साफ कर दे, ऐसा साफ करे कि कोई कदूरत, जंग, रंग और मोहब्बत दुनिया न रहे, और वो आदमी को जूं ही बैत करता है उससे वासिल इलल्लाह कर दे। अगर इतनी ताकत ना हो तो जानना चाहिए कि पीर और मुरीद दोनों गुमराही की वादी में घूम रहे हैं। बहुत नाजुक बात। सूफी मर्द कामल बनने के लिए, सूफी बनने के लिए, मर्द कामिल बनने के लिए फरमाते हैं कम सोना, कम खाना, कम बोलना और कम राबता, ये 4 कम बड़े जरूरी हैं, वो बंदा मर्द कामिल बनेगा। आज तो कम सोना नहीं, ज्यादा पीर साहब तो टका के सोते हैं, कम खाना सबसे ज्यादा वो खाते हैं, कम बोलना, कम राबता, बल्कि सबसे पीर साहब का राबता पूरा साल ही घूमते रहते हैं, आज फलां तरफ गए, आज फलां तरफ गए, आज फलां तरफ गए, वो घूमते रहते हैं, कुछ कुछ इंटरनेशनल है वो मुल्कों में घूमते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने आफात से बचने के लिए अपने वज़ाइफ भी बड़े बताए। आप फरमाया करते थे अपने मुरीदीन से कि जब तुम घर से निकलने लगे तो घर से निकलने से पहले तुम आयतुल कुर्सी को पढ़ दिया करो, जब तक घर वापस आओगे तुम्हारा घर अल्लाह ताला महफूज रखेगा। और अक्सर लोग आ जाते हैं हुजूर रिस्क कम है, फरमाया कि अगर रिस्क में बरकत चाहते हो तो मैं तुम्हें एक दुआ बताता हूं, आप लोग भी अगर याद कर सकते, मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता हूं ताकि आपको, अगर आप याद करना चाहो तो याद कर सको। आपने फरमाया कि अगर रिस्क की में बरकत चाहते हो तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये दुआ पढ़ा करो, या दाइमल इज्ज वल मुल्क, या दाइमल इज्ज वल मुल्क वल बकाए, या जल जलाल वल जूद वल फदल वल अता, या वदूद या जल अर्शिल मजीद या फआलुल लिमा युरीद। एक दफा और पढ़ो, या दाइमल इज्ज वल मुल्क वल बकाए, या जल जलाल वल जूद वल फदल वल अता, या वदूद या जल अर्शिल मजीद या फआलुल लिमा युरीद। ये दुआ रिज्क के बरकत के। पीर से मोहब्बत आपकी बहुत ज्यादा है, अपने मुर्शिद से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने मुर्शिद की याद में कलाम लिखते और पढ़ते रहते, बड़ी मोहब्बत थी। एक रोज आपने इजाजत कदमबोसी के लिए इजाजतनामा चाहा और बंदे को भेजा, जाओ सरकार से इजाजत लेकर मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो जाऊं। तो पीर ने पैगाम भेजा, तुम रुको हम आते हैं, अल्लाह तुम रुको हम आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अजमेर से चले। जब दिल्ली में पहुंचे तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुतमिश ये सब और बड़े बड़े उमर हाफिज़ुल्लाह सो सब इस्तकबाल के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती तशरीफ। मैं बड़ी मेरी आरजू रही है कि मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह के दर पर जाऊं, लेकिन उन वीजा नहीं मिलता, अमेरिका से भी वीजा नहीं मिल रहा। बहरहाल ये उनका करम मुझ पर रहता है कि मेरे एक दोस्त हैं वो अक्सर जाते रहते हैं ख्वाजा मईनुद्दीन जी मेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो क्या करते हैं कि वो वहां जाकर, आजकल तो आपको मालूम है सलों के अंदर भी कैमरा है, वो वहां जाके कैमरा ऑन कर देते, मैं यहां से कैमरा ऑन कर लेता हूं तो वो चलता रहता है तो मैं फातिहा पढ़ता रहता हूं, तो वो फिर कब्र के पास खड़ा हो जाता है तो मैं फिर फातिहा पढ़ता हूं, अलहम्द शरीफ पढ़ता हूं, कुलवल्ला पढ़ता हूं, चलो मेरी आवाज तो वहां गूंजती है तो वो स्पीकर ऑन कर देता है, फिर बंदे बैठे होते हैं तो मैं फातिहा पढ़ता हूं। और दूसरा उनका कर्म यह है कि तकरीबन उन्हीं का सैयद सरवर चिश्ती साहब वो तशरीफ ले आते हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है, बड़ी मेरी मुझसे बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, सर आप यूट्यूब के ऊपर देखेंगे उनके साथ मेरी काफी तकरीरें, तो ये कर्म फरमा देते हैं वो, उनकी मेहरबानी और जरा नवाजी है। तो ख्वाजा साहब जो तशरीफ लाए सब इस्तकबाल के, अब खूब महफिलें जमने लगी, बादशाह ने कहा कि हुजूर मेरे महल में रुकी है, फरमा लगा नहीं हम कुतुबुद्दीन की खानकाह में ठहरे, तो ख्वाजा मईनुद्दीन मेरी चिश्ती का मौला कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह की खानकाह में ठहरे, महफिलें जमीन, आपके जाने के बाद फैज और बढ़ गया, कुतुबुल अख्ताब की खानकाह मरजाए खलाक बन गई और मुंबई बरकात बन गई। दूसरी मरतबा फिर, यह पहली मुलाकात है, और दूसरी मरतबा 10 साल के बाद अचानक ख्वाजा मईनुद्दीन मेरी चिश्ती का मौला खुद दिल्ली तशरीफ ले आया बिना बताए, खानकाह में पहुंचे तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैरान रह गए, मुर्शिद तशरीफ ले आए, हुजूर मुझे बताया होता इतना दी होती, आप तशरीफ ले, हैरानी बढ़ गई और खुशी भी बढ़ गई। ख्वाजा कहने लगे नहीं वो ये किसान है ना जो ये बेचारा मुजारिया, ये इसकी कुछ जमीन का मसला था, ये मेरे पास शिकायत लेकर आया कि मेरी थोड़ी सी जमीन है, मैं गरीब आदमी हूं, वो कुछ किसी ने हिठा ली है, तो मैंने कहा चल दिल्ली चलकर बादशाह से तेरी सिफारिश करते हैं। देखा अजमेर से चले दिल्ली कि बादशाह एक आम किसान के लिए चल तेरी सिफारिश कर देते। आपने फरमाया उसे रुकिया, वो लिया फरमाना और भी कोई काम फेंका जी, मैं खुद जाता। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह के पांच बादशाह आता था लेकिन अपने पीर की खातर, अपने पीर का वो लेकर वो नामा खुद गए। ऐसे फैज नहीं मिलते, क्यों फैज खुद गए, वरना बादशाह के महल में जाना गवारा नहीं करते थे आप, कहा पीर मुर्शिद आप रुको मैं जाता हूं, खुद गए। अब रोज महफिल जो है वो जमने लगी, काम सब हो गए, अब वक्त जरा करीब है, फैज पे फैज देते चले जा रहे हैं सब लोग मिलने के लिए, जब बादशाह मिलने के लिए आता है तो सब मिलने के लिए आते हैं, नहीं आया तो शेखुल इस्लाम नहीं आया, शेखुल इस्लाम नजमुद्दीन सुगरा नहीं आया। आप उठे, आप उसके घर खुद चले गए, ख्वाजा मईनुद्दीन मेरी चिश्ती हमारा खुद चले, ये तो आगे देखा तो वो कुछ बनवा रहा था किसी मिस्त्री से, फरमाने लगे तुझे शेखुल इस्लामी का ऐसा भूत सवार हुआ है, तकबूर आया कि तू मुरव्वत भी खत्म हो गई तेरे अंदर, सब मिलने आए तू मुझे मिलने नहीं आया। लजू शेखुल इस्लाम नजमुद्दीन सुगरा ने मुंह तक नहीं किया उसकी ख्वाजा मईनुद्दीन मेरी चिश्ती का मौला की तरफ। आपने फरमाया तुझे मसला क्या है, कहने लगा ये जब से तेरा मुरीद दिल्ली में आया है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, लोग मुझे कुछ समझते नहीं है, सब इसी के साथ लगे रहते हैं। ख्वाजा मईनुद्दीन मेरी चिश्ती ने फरमाया अच्छा अच्छा तू परेशान ना हो, मैं अपने मुरीद को अपने साथ अजमेर ले जाता। अल्लाह अकबर। आपने मुरीद से कहा चल चलो यहां नहीं रहेंगे तुम, अजमेर मेरे साथ चलोगे। अब लेके जब आप चलने लगे पूरा दिल्ली खाली हो गया, बादशाह तक पीछे, लोग रो रहे हैं, और जहां ख्वाजा मईनुद्दीन मेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपना पांव मुबारक रखते हैं लोग मट्टी उठा उठा के चूम रहे हैं और रोते जा रहे हैं, हुजूर इन्हें छोड़ जाइए, हुजूर इन्हें छोड़ जाइए, आपको तो हम कुछ नहीं कह सकते कि आप रुकिए लेकिन इनको तो छोड़ जाइए। बस यही बतलाना था, शेखुल इस्लाम नजमुद्दीन सुगरा को भी पता चल गया कि इनकी वक़्त कितनी है, उन्होंने फरमाया कुतुबुद्दीन से रुक जाओ, बस ये बतलाना था जिसे उसे मालूम हो गया तुम्हारी यहां ज्यादा जरूरत है यहीं रुक जाओ। अल्लाह अकबर। ये दो मुलाकातें थी ख्वाजा मईनुद्दीन जी मेरी चिश्ती तशरीफ, तीसरी मुलाकात आखिरी मुलाकात जाहिरी मुलाकात ख्वाजा मईनुद्दीन जी मेरी चिश्ती रहमतुल्लाह का वक्त करीब आ गया, आपने पैगाम भेजा कुतुबुद्दीन मुझे मिलने के लिए जल्दी आओ। आप दिल्ली से चले, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह जब वहां पहुंचे तो आपने उनको नसीहत नसाए और वाज करना शुरू किया, 40 नशिस्तें उनमें 40 खिताबात जो आपने जमा किए। फिर एक दिन महफिल से जाई गई, सबको बुलाया गया, सब आए तो आपने कुतुबुद्दीन से कहा मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ। आप यूं चारपाई के ऊपर जलवा फरमाते, जिस्म जरा कमजोर था, मेरे करीब, लेकिन आप फिर भी उठ गए। उठ के आपने अपना कुल्ला मुबारक जो है वो अपने हाथ से यूं पहनाया, जब पहनाया تو فرمانے لگے آج سے یہ میرا نائب اور خلیفہ اعظم ہے. قطب الدین بختیار کاکی آپ کے بیٹے نہیں ہیں، حقیقی بیٹے نہیں ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ولایت و خلافت مروسی نہیں ہوتی. ہاں چاہیے یہ تھا کہ آپ اپنا سجادہ نشین بیٹے کو بناتے، نہیں. قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے سر پہ کلا، فرمائیے میرا نائب و خلیفہ اعظم ہے. آپ نے پھر ان کو مسلح دیا، اپنے ہاتھ پگڑی باندھی، مسلح دیا جس پہ نماز پڑھتے تھے، قرآن مجید دیا جس پہ آپ خود تلاوت کرتے تھے، نالین چوبی دی، لکڑی کے جوتے جو ہیں وہ دیے، اور عصا مبارک خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کا عصا، اور جو تبرکات پیچھے سے چلے آثارے دے دی. تبرکات دینے کے بعد آپ نے کہا یہ ہمارے مرشد نے ہمیں دیے تھے، ہم نے تم کو ادا کر دیا. جسے مرد پاؤ اسے یہ عطا کر دینا. دیکھا تصوف کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں اپنے بچوں کو دے جاؤں یا ان کو دے جاؤں، جس کو کامل پایا جاتا ہے اسے دیو. کہا جس کو کامل پاؤ تم دے دینا، مجھے میرے پیر نے دیے تھے میں نے تمہیں دے. اور فرمایا جاؤ جا کے دو رکعت ادا کرو. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے دو رکعتیں ادا کی، یہ شاید شکرانے کی ہوں گی. پھر آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف یوں دیکھتے ہوئے، میں نے تم کو اللہ کے حوالے کیا اور اس مقام تک لانے میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. اور فرمایا جاؤ اب ڈیلی ہی تمہارا قیام ہوگا اور ہمیشہ تک تم وہی رہو گے، جاؤ. پر جب یہ کہہ دیا تو آپ خود وہ چارپائی کے اوپر وہ جو بھی تھی جہاں لیٹتے تھے وہاں بیٹھ گئے. یہ تھوڑا سا ہٹے، ہٹ کے کھڑے ہوئے. سمجھو گا یہ کھڑے کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ سوچ رہے تھے میں اپنے پیر کے پہنچی ہوں لوں، یہ انٹینشن تھی، صرف نیت تھی، بولے نہیں. خواجہ قطب محی الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ مسکرا پڑے، کہنے لگے آ جاؤ. آئے تو خواجہ قطب الدین سیدھے پاؤں میں گرے اور پاؤں چوم لی، پاؤں کا بوسا لے لی. خواجہ محی الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ نے ان کو پھر اٹھا لی، اٹھا کے سینے سے لگایا، سینے سے جب لگایا تو پھر فاتحہ پڑی، الحمدللہ رب العالمین. یہ فاتحہ صرف مردوں کے لیے نہیں پڑھی جاتی، الحمدللہ. پڑھنے کے بعد فرمانے لگے، جب دوبارہ الحمدللہ پڑھ لی، وہ خواجہ قطب الدین پھر گر گئے پاؤں میں، پھر پاؤں مبارک چوم لی، دو مرتبہ پاؤں مبارک چومے. اس کے بعد آپ نے فرمایا جاؤ اب چلے جاؤ. آپ اجمیر سے روانہ ہوئے، ٹھیک 20 دن کے بعد، آپ کی روانگی کے 20 دن بعد اطلاع پہنچ گئی کہ خواجہ محی الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ کا وصال ہو گیا. تو آپ اپنے مرشد کی جدائی میں رویا کرتے تھے، کلام پڑھتے تھے اپنا، روتے تھے. یہ مرشد جو ہوتا ہے نا، یہ حقیقی محبوب ہوتا ہے. دل پریشان دیدہ ہیراں کردائی، جان من تو کردائی ہاں کردائی، دیدہ گریاں سینہ بریاں کردائی، جان من تو کردائی ہاں کردائی. دل گریاں دیدہ گریاں یعنی آنکھ رونے والی بنا، سینہ بریاں، بریاں کہتے ہیں یہ بریانی سنا، بریاں جلانے کو کہتے ہیں، سینہ جلا دی. جان من تو کردائی ہاں کردائی، ہاں یہ تو نے کیا میرے محبوب، یہ تیری وجہ سے. شوخی و بے باقی و نازو ادا، بہر یک دل اینچے سما کردائی، از کجا می آئی ہے طوفان حسن، عالم را خانہ ویراں کر دائی، جانے ہم شکرانہ است اے درد عشق، مردن دشوار از آسان کر دائی. سما کے دیوانے تھے آپ، آپ کا وصال بھی سما میں ہی ہوا ہے، بس بات ختم ہونے کے قریب ہے. آپ کا وصال مبارک بھی سما کے اندر ہوا، قوالی جو ہے وہ پڑی جا رہی ہے. سما کے بارے میں لوگوں کا بہت سے نظریات ہیں، میں غلط اور اچھا، لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. سما کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سما جو ہے جی یہ ہندوستان کے اندر چونکہ ہندو لوگ رہتے تھے اور وہ بھجن گایا کرتے تھے، تو اس لیے صوفیاء کرام نے ان کے لیے اس کو ذریعہ بنایا اور سما شروع کر دی. واہ بھائی واہ، کیا تحقیق ہے بھائی. تو مولانا روم کون ہے پھر؟ چلو انڈیا کے اندر تو بھجن کی وجہ سے سما شروع ہوا، تو مولانا روم کون سے انڈیا میں تھے بھائی؟ ان کے ہاں بھی تو سما اور قوالی ہے. شمس تبریزی رحمۃ اللہ کون سے انڈیا میں تھے؟ وہ بھی تو قوالی اور سما سنتے تھے. شیخ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کون سے تھے، برہان الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کون سے تھے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے پہلے سے سما چل رہا ہے. تو سما انڈیا میں نہیں ہوا بھائی، انڈیا میں صوفیہ لے کر آئے ہیں. سما جو ہے ایران، عراق، خراسان، سمرقند، چیچنیا، ان سب ریاستوں، ان علاقوں میں پہلے سے سما جاری تھا. جائیے جا کے تاریخ پڑھیے، پھر سما پہلے سے تھا وہاں. ایون کہ آج بھی اگر آپ چیچنیا میں چلے جائیں تو وہاں جو کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو اس انداز سے پڑھا جاتا ہے کہ وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے سما ہے، قوالی ہو رہی ہے. ان کی عورتیں بھی اور وہ بھی، مولانا روم خود محفل سما جمایا کرتے تھے، خود کلام پڑھتے تھے. تو بات کو سمجھ میں آ گئی. تو یہ انڈیا میں آ کر بھجنوں کی وجہ سے نہیں، ہندوؤں کی وجہ سے نہیں، یہ سما پہلے سے تھا. اب میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ چشتیوں نے اس کو ذریعہ بنایا. بعض اوقات ایک ہی چیز ہر ایک کے لیے صحیح بھی نہیں ہوتی. یہ جتنے بھی صوفیاء کرام تھے یہ کیا کرتے تھے کہ یہ مجاز کو لے کر حقیقت کی طرف آ جاتے، فوکس کرتے تھے. ہاں اگر یہ لوگ عیاش ہوتے تو میں سمجھ جاتا کہ جو کہہ رہا ہے کہ سوا حرام ہے میں اس کی بات مان لیتا. عبادت گزار تمام قاضیوں سے بھی افضل، سخی بادشاہوں سے بھی زیادہ، اور مومن ہم سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ، صحابہ کے بعد، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کے بعد سب سے زیادہ. تو پھر دنیا میں جو آدمی آتا ہے آخر اس نے جانا بھی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالی، سماع کی محفل ہے، صلاح الدین اور نصیر الدین قوال جو ہیں وہ کلام گا رہے ہیں. جب وہ کلام پڑھ رہے ہیں تو اس پہ جب پہنچے کشتگانِ خنجر تسلیم راہ، کشتگانِ خنجر تسلیم راہ، اس پہ جب پہنچتے ہیں تو چار دن، ایک جگہ تین دن، چار دن سے آپ کی طبیعت بڑی عجیب سی ہے، ہر زمان از غیب جانے دیگر است. وہ جب قوال پڑھتے ہیں تو آپ کا جسم جو ہے وہ یوں زمین سے اٹھنے لگ جاتا ہے، جسد سج لیٹا ہوتا ہے. تو کچھ تگانے خنجر تسلیم راہ جو ہے وہ جب پڑھتے ہیں تو اٹھ جاتا ہے، اور جب ہر زمان از غیب جانے دیگر است زمین پہ گر پڑتا ہے، جسم میں جان بھی نہیں. تو اب کہا گیا ان سے، قوالوں سے یہ کہا گیا، سنو وہ جو کچھ تگانے خنجر تسلیم رہا ہے بس اسی مصرے کو پڑھتے رہو، آپ کی روح قبضِ انصری سے جو ہے وہ پرواز کر دی، آپ کا جسد انور جو ہے وہ میدان میں رکھ دیا نماز ادا کرنے کے لیے. جب بادشاہ آ گیا ہے تو ساری گورنمنٹ آ گئی، اور جب قاضی حمید الدین نگوری رحم اللہ موجود ہیں، قطب الدین بختیار کاکی رحم اور ان کے، تو سارے صوفیاء کرام بھی وہاں، کیونکہ سب سے بڑے صوفی آپ ہیں، میدان بھر گیا، پورا تیزی آیا ہوا ہے. اب سوچ رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف کے جنازہ کون پڑے گا، امامت کون کرائے گا، بھائی علماء بھی موجود ہے، صوفیاء بھی موجود ہے، بادشاہ خود موجود ہے، تو کون پڑھائے؟ اب یہ ہوا کہ کون جنازہ پڑھائے، تو خواجہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، انہوں نے ایک صفحہ کھولا اور اس پہ وصیت پڑھنے لگے. کہنے لگے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے آپ وصیت فرما گئے ہیں، آپ سب لوگ تمام وصیت سن لو کہ کون آگے بڑھ کر جنازہ پڑھائے گا. وصیت جب پڑھنے لگے تو اب ذرا آپ بھی وصیت سن لیجئے، اندازہ ہو جائے کہ صوفی کیسے ہوتے تھے. آج کل کے دھوکے بازوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان لوگوں سے ہمارا تعلق ہے. آپ ذرا سنیے گا غور سے. وصیت شروع ہوئی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وصیت فرما گئے ہیں کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے پوری زندگی کبھی گناہ کبیرہ نہ کیا ہو. پہلی شرط. دوسری شرط، میرا جنازہ وہ پڑھائے گا کہ جس کی فرض نماز تو بڑی دور کی بات ہے، عصر کی سنن جس کو سنتیں کہتے ہیں، عصر کی چار پہلی سنتیں بھی پوری زندگی جب سے نماز فرض ہوئی ہے اور اب تک کبھی قضا نہ ہوئی ہوں. دو، تیسرا، جب وہ فرض نماز جو ہے اس کی تکبیر اولا کبھی مس نہ ہوئی ہو. تکبیر اولا جب امام کہتا ہے اللہ اکبر، یعنی پتا چلا کہ اس نے بلوغت سے لے کے اب تک کبھی نماز جماعت بھی اس نے مس نہ کی ہو. وہ آگے بڑھ کر میرا جنازہ پڑھائے گا. اب سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. کیا وہاں مولوی نہیں تھے، قاضی نہیں تھے، صوفیاء نہیں تھے؟ سب تھے، مگر کسی کی جسارت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر جنازہ پڑھائے. تو پھر دہلی کا بادشاہ اور آپ کا مرید سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھا. کہنے لگا میں تو چاہتا تھا کہ پردہ رہ جائے، مگر پیر نے میرا پردہ چاک کر دیا، فاش کر دیا، سب کو بتا دیا. آگے بڑھے اور دہلی کے بادشاہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا. اللہ اکبر جل شانہ، دہلی کے بادشاہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا. پتا چلا کہ جو آپ کا مرید دہلی کا بادشاہ تھا، ساری زندگی اس نے کبھی گناہ کبیرہ نہیں کیا، کبھی جماعت کی تکبیر اولا اس نے مس نہیں کی، اور کبھی عصر کی جو ہے سنن اس نے قضا نہیں کی. छोड़ी नहीं। और जिनके मरीदों का यह हाल है, उस पीर का अपना हाल इबादत का क्या होगा? तो क्या आज हम ऐसे पीरों की तुहीन करेंगे? अल्लाह अकबर जल्ला शान। महरौली दिल्ली में आपको मजार मुबारक है। मैं तो और वहां इर्द गिर्द बहुत से और भी औलिया कराम की कब्रें हैं। ये कुतुब मीनार भी आपके नाम ही की वजह से, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन आपको पता है कि मुकम्मल किसने किया था? सुल्तान शम्सुद्दीन अल्तुतमिश। तो कहते हैं कि कुतुब मीनार जो कहा जाता है वो भी यहीं की वजह। तो ये सारी मशहूर चीजें ये सब एक ही जगह के ऊपर है। मैं तो उनके लिए फातिहा पढ़ ली, आप भी उनके लिए एक दफा फातिहा पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला उन पर रहमत नाजल फरमाए। इजाजत दीजिए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।